नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत योजना और आरोग्य मंदिर के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। भारत का पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर। अमेरिका और इसराइल के ईरान के भूमिगत मिसाइल ढांचे पर हमले से पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज हुआ। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन दागे। तेल की कीमतें 4 साल में पहली बार $100 प्रति बैरल से अधिक हुई। सेंसेक्स में 1,700 से अधिक अंक की गिरावट। निफ्टी भी 500 अंक से अधिक गिरा। लोकसभा की कार्यवाही, पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक स्थगित। और हैदराबाद में FIH विश्व कप महिला हॉकी क्वालिफायर मैच में आज भारत का सामना स्कॉटलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का स्वास्थ्य ढांचा और मजबूत हुआ है। सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
साथियों, भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव गांव तक बढ़ाई गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति केवल चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये बजट का आधार और सरकार की प्रतिबद्धता है। देखभाल अर्थव्यवस्था के उदय पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि केयर गिवर्स की बढ़ती वैश्विक मांग देश के लाखों युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है।
एक अहम विषय जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है केयर इकोनॉमी। आने वाले दशक में देश में सीनियर सिटीजन्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा आज वर्तमान में दुनिया के कई देशों में केयर गिवर्स की भारी मांग है। इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में लाखों युवाओं के लिए नई स्किल आधारित रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर गर्व व्यक्त किया। श्री मोदी ने भविष्य की प्रौद्योगिकियों में बेटियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने एक सशक्त अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया, जो युवा शोधकर्ताओं को बिना किसी बाधा के नवाचार और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे।
आपके सुझाव बहुत अहम होंगे। साथियों, जब इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री, एकेडेमिया मिलकर काम करते हैं तो परिवर्तन की गति तेज हो जाती है। बजट के बाद वेबिनार की जो ये सीरीज हुई है, मुझे विश्वास है उसे आने वाले समय के लिए ठोस दिशा मिलेगी। ऐसे ही प्रयासों से विकसित भारत की नींव और मजबूत होगी।
भारत ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया है। पश्चिम एशिया की स्थिति पर लोकसभा में बयान देते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सरकार ने पिछले महीने की 20 तारीख को स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया था और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उभरते घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं और संबंधित मंत्रालय प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समन्वय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर नजर रखने और जानकारी देने के लिए एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। श्री जयशंकर ने कहा कि अब तक लगभग 67,000 भारतीय नागरिक देश लौट चुके हैं। उन्होंने बयान विपक्ष के हंगामे के बीच दिया, जो इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था। लोकसभा की कार्यवाही, पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बयान दिया। उनका बयान शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने उनसे सदन में तख्तियां न दिखाने का अनुरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन के भीतर विपक्ष के व्यवहार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव के संबंध में नोटिस दिया था और ये आज की कार्यसूची में चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्ष भ्रमित है और आज अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। पीठासीन अधिकारी के अनुरोध के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। पश्चिम एशिया की स्थिति के संबंध में राज्यसभा में बयान देते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत ने इस वर्ष जनवरी में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी थी और उनसे भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने और उचित सावधानी बरतने को कहा था।
इंडिया इज इन फेवर ऑफ पीस।
भारत शांति के पक्ष में है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने का आग्रह करता है। हम संयम बरतते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पक्ष में हैं। क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हम क्षेत्र के देशों की सरकारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। हमारे लिए ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापारिक हित सहित राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि रहेगा। मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे पर सरकार को इस सदन का पूरा समर्थन प्राप्त है।
नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि सरकार पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री नायडू ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय क्षेत्र में संचालित एयरलाइंस के साथ संपर्क में है और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिपत्र जारी किया है कि उड़ानें 100% सुरक्षा की गारंटी के साथ ही संचालित हों। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर श्री जयशंकर के बयान के दौरान विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी रुचि बहस में नहीं बल्कि अराजकता फैलाने में है।
बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है।
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण देश की आर्थिक स्थिरता प्रभावित होगी। संसद के दोनों सदनों ने भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब जीतने पर बधाई दी है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि इस जीत के साथ भारत ने तीसरा T20 विश्व कप खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम के शानदार प्रदर्शन ने देश भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को गौरवान्वित किया है।
With India having won the previous edition as well, the achievement is even more historic. Yes, India has become the first host nation ever to win the ICC Men's T20 World Cup, making this accomplishment truly special for the country. The team's outstanding performance throughout the tournament has brought immense joy and pride to millions of cricket lovers.
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका, इसराइल और ईरान संघर्ष के 10वें दिन भी तनाव जारी है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई सुरक्षात्मक उपाय किए हैं। इस बीच फुजैरा में अधिकारी तेल उद्योग क्षेत्र में लगी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। एक रिपोर्ट।
अमेरिका, इसराइल और ईरान से जुड़े संघर्ष ने गंभीर रूप ले लिया है। ईरान के भूमिगत मिसाइल ढांचे पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए गए हैं और खाड़ी क्षेत्र में मिसाइलों और ड्रोन को लगातार रोका जा रहा है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड का कहना है कि हाल के दिनों में उसकी सैन्य कार्रवाइयों में सैकड़ों मिसाइलें, लॉन्चर और ड्रोन नष्ट कर दिए गए, साथ ही 17 नौकाओं को भी तबाह किया गया है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात हाई अलर्ट पर है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रविवार शाम से सोमवार सुबह के बीच वायु रक्षा प्रणाली ने 17 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया, जिनमें से 16 को मार गिराया गया जबकि एक मिसाइल समुद्र में गिरकर निष्क्रिय हो गई। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने चेतावनी दी है कि अगर पड़ोसी देशों से हमले किए जाते हैं तो ईरान उनका जवाब दे सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें 4 साल में पहली बार $100 प्रति बैरल से अधिक हो गई हैं। ब्रेंट क्रूड 16% से अधिक बढ़कर 107 अमरीकी डॉलर और 59 सेंट प्रति बैरल पर पहुंच गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 2.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1833 अंक लुढ़ककर 77,086 पर, जबकि निफ्टी 566 अंक गिरकर 23,884 पर आ गया। नेपाल में प्रथम पास द पोस्ट प्रणाली के तहत 3 निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना जारी है और 162 निर्वाचन क्षेत्रों के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 124 सीटों पर जीत हासिल की है और एक सीट पर आगे चल रही है। नेपाली कांग्रेस ने 17 सीटें जीती हैं, यूएमएल ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि एनसीपी ने केवल 7 सीटें जीती हैं। आरपीपी ने 1 सीट, श्रम संस्कृति पार्टी ने 3 सीट और म्यागदी से 1 निर्दलीय उम्मीदवार ने 1 सीट जीती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर में 3 महीने से अधिक की शीतकालीन छुट्टियों के बाद कश्मीर घाटी में सभी शिक्षण संस्थान फिर से खुल गए हैं। प्राथमिक स्तर की कक्षाएं पहले 2 मार्च को खुलने वाली थीं। सरकार द्वारा कश्मीर के सभी शिक्षण संस्थानों को 7 मार्च तक बंद रखने के आदेश के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
मध्य पूर्वी क्षेत्र में जारी युद्ध के बीच कश्मीर क्षेत्र में अब स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है और सभी वर्गों के लोग अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में व्यस्त हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समाज के सभी वर्गों से शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में श्रीनगर में विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत की और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का आह्वान किया। साथ ही ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या पर शोक व्यक्त किया। तारिक रात्र, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर।
हैदराबाद में FIH विश्व कप महिला हॉकी क्वालिफायर के पूल बी के दूसरे मैच में आज भारत का सामना शाम 7:30 बजे स्कॉटलैंड से होगा। हैदराबाद में होने वाला टूर्नामेंट महिला हॉकी विश्व कप के 2 क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में से पहला है। दूसरा टूर्नामेंट चिली के सेंटियागो में चल रहा है। दोनों टूर्नामेंट की प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम इस वर्ष बेल्जियम और नीदरलैंड्स में संयुक्त रूप से होने वाले महिला हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। गुजरात, राजस्थान और विदर्भ में भी कल तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। अगले 2 दिन के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल और पूर्वोत्तर भारत में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित, शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से भारत के विकसित राष्ट्र बनने का सपना साकार होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के विकास की गाथा अब महिला प्रधान विकास की ओर बढ़ रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की पहल और योजनाओं पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा के दौरान श्रोता अपनी जिज्ञासा सामने रख सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331048, 0112371717, 0112371106 और 0112331444 #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत योजना और आरोग्य मंदिर के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। भारत का पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर। अमेरिका और इसराइल के ईरान के भूमिगत मिसाइल ढांचे पर हमले से पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज हुआ। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन दागे। तेल की कीमतें 4 साल में पहली बार $100 प्रति बैरल से अधिक हुई। सेंसेक्स में 1,700 से अधिक अंक की गिरावट। निफ्टी भी 500 अंक से अधिक गिरा। लोकसभा की कार्यवाही पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक स्थगित। और हैदराबाद में FIH विश्व कप महिला हॉकी क्वालिफायर मैच में आज भारत का सामना स्कॉटलैंड से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।